मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 28 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने दो मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस में एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं सत्यम मिश्रा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और रीना गिरी सिसवा बाजार उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले हम लोग दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना और बकायदे दूरदर्शन न्यूज पर भी आपने ये खबर सुनी और देखी भी एयर इंडिया को लेकर। अब हमारी जो एयर इंडिया है जिसका चिन्ह है महाराजा, वो बिकने को तैयार है, यानी कि सरकार ने फैसला किया है कि इसे वो बेचेगी। हालांकि दो साल पहले भी सरकार का ये फैसला था, लेकिन उस समय के फैसले में सरकार ने ये निर्णय लिया था कि सरकार इसका केवल 76% भाग ही बेचेगी, यानी कि 24% अधिकार अपने पास रखेगी। जो भी उस समय शर्तें निर्धारित की गई थी उसके प्रति जो इन्वेस्टर्स से उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और मामला खत्म हो गया। लगभग दो साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की, और उस अनुभव को देखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नहीं, वो इसका 100% भाग बेच देगी। 100% यानी कि पूरी तरह से इसको बेचकर वह इससे मुक्त हो जाएगी। तो 100% 76% 51% 49% क्या होता है, इसके बारे में मैं इससे पहले आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं, बता चुका हूं, तो उसे दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है, जो यू कह लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से विचार करने योग्य है, वह यह है कि सरकार एयर इंडिया को बेच तो रही है, लेकिन यह नौबत क्यों आई। जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि लंबे समय से यह एयरलाइंस लगातार घाटे में चल रही है। ठीक है, तो घाटे में चल क्यों रही है, आप देखिए कि आप जब दूसरे एयरलाइंस के बारे में सुनते हैं, चलिए जेट एयरवेज की हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन आप दूसरे एयरलाइंस को देखिए, वो लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके बेड़े में जहाजों की संख्या, एयरप्लेन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एयर इंडिया के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, ये केवल एयर इंडिया की बात नहीं है, सच पूछे तो हमारी ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं, उनका यही संकट है। तो यहां जो हमारा विषय बन रहा है वो ये है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है, ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम, वे घाटे में क्यों चल रहे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर वाले उसी में इतना अच्छा कर ले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस पर विचार किया ही जाना चाहिए। देखिए, वैसे जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं कि आप पूरी दुनिया के सामने अपने बाजार को मुक्त कीजिए और दुनिया के बाजार में खुद भी प्रवेश कीजिए, तो वहां एक बात आती है कि जो सरकार है उसको इस तरह के उद्योग धंधों में नहीं लगना चाहिए। उसका जो मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, व्यवस्थाएं करना, ये जो व्यापार का क्षेत्र है वो प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, और सैद्धांतिक दृष्टि से ये सही है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, जैसे अगर हम एयर इंडिया की ही बिक्री की बात लें, तो ये जब बिक जाएगी तो जो भी व्यक्ति इसे खरीदेगा तो वो स्वाभाविक है कि उन रूट पर अपनी एयरलाइंस चलाएगा जहां उसको पैसेंजर्स मिलेंगे। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उसे वहां के क्षेत्र के लोगों को थोड़ा सा लाभ पहुंचाना है, वहां के उस क्षेत्र का विकास करना है, तो भले ही थोड़ा सा घाटा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, वो अपने योजना में इस बात का को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देगा, जबकि सरकार तरजीह देती है। तो इसके दोनों ही पक्ष हैं, तो इन दोनों पक्षों पर बहुत ही संतुलित तरीके से आपको विचार करना चाहिए। बिल्कुल एक तरफा आप लेकर कोई निर्णय न निकालें, निष्कर्ष न निकालें। दोस्तों, एक नाम आपने सुना खिलाड़ी का, कोबे ब्रायंट। दूरदर्शन पर यह खबर थी कि कोबे ब्रायंट जो है उनका निधन हो गया है। वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी 13 साल की बेटी भी थी, उनका भी निधन हो गया। उनका हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराया कोहरे के कारण और उनका निधन हो गया। तो कोबे ब्रायंट, ये नाम आप याद रखिएगा, विश्व के महानतम खिलाड़ियों में माने जाते हैं और हमारे देश के खिलाड़ियों ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है, और यहां तक कि विश्व के जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। तो इससे जाहिर होता है कि वो कितने प्रतिष्ठित और सम्मानित खिलाड़ी होंगे। कोबे ब्रायंट, उम्र ज्यादा नहीं थी, 41 ईयर्स, और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, आपको याद रखना चाहिए, बास्केटबॉल। और इनकी जो हाइट थी, मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए, 6.5 फिट इनकी हाइट थी। बास्केटबॉल के लिए आप जानते हैं कि हाइट का अधिक होना एक तरह से उसकी डिमांड जैसी होती है, तो कोबी ब्रायंट का नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो मेरा मुख्य विषय है आज का हो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, और ये विषय मैंने क्यों चुना है आपने बहुत सही अनुमान लगा लिया होगा, क्योंकि कल एक बहुत अच्छा त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसे आप ऐतिहासिक समझौता कह सकते हैं। और ये जो समझौता हुआ है त्रिपक्षी क्यों है, एक पक्ष उसमें है केंद्र सरकार, इसका जो दूसरा पक्ष है वो असम की राज्य सरकार, और जो तीसरा पक्ष है वो है जो बोडोलैंड की डिमांड करने वाले कुछ संगठन हैं, वे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के जो ग्रुप हैं उसके सदस्य। अभी तक जो खासकर इससे पहले भी इस तरह के समझौते हो चुके हैं, लेकिन उसकी सीमा ये होती थी, बस यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उसमें सरकार होती थी, दूसरे तरफ बोडोलैंड का कोई एक गुट होता था। बोडोलैंड की डिमांड करने वाले बहुत से गुट हैं, वो आपस में एक नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड बोडोलैंड की मांग है कि अलग से राज्य दिया जाए, अलग से स्वायत्तता दी जाए, वो अलग अलग तरीके से थोड़ी सी मांग करते रहते हैं। इसकी खासियत यह है उन सबसे अलग कि इसमें बोडोलैंड के ज्यादातर गुट शामिल हैं, यानी कि एक साथ मिलकर के उन्होंने ये समझौता किया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते के बाद असम में जो ये जो बोडोलैंड को लेकर के आंदोलन हो रहा था यह समाप्त हो जाएगा, और इसके लिए बकायदे सरकार ने कुछ वायदे किए हैं इस समझौते के तहत। उसमें जो सबसे बड़ा जो वायदा है वो ये है कि जो बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट हैं BTAD, उसके तहत जो बोडो डोमिनेंट विलेज हैं, जहां बोडो की लोगों की जनसंख्या, बोडो वहां की एक जनजाति समूह आदिवासी समूह है, उनके जितने भी गांव हैं उसको शामिल कर लिया जाएगा। और अभी जो ऑलरेडी इस तरह की स्वायत्तता है उसमें से उन क्षेत्रों को बाहर निकाल दिया जाएगा जो क्षेत्र नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है, यानी कि जहां नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और इस तरह से एक नया रीजन बनाया जाएगा और उसका नाम होगा बोडो टेरिटोरियल रीजन। जो बोडो लैंग्वेज है उसको बकायदे एक ऑफिशियल असम के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नोटिफाइड किया जाएगा, और सरकार ने 1500 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर इस बोडो लैंड एरिया के डेवलपमेंट के लिए देने का वायदा किया है। जो लोग अभी तक इस तरह के उग्रवादी आप कह लीजिए घटनाओं में शामिल रहते थे उन्हें माफीनामा दी जाएगी, सार्वजनिक माफीनामा उन्हें दे दी जाएगी, यानी माफ कर दिया जाएगा। ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं। जब हम इसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से सोचते हैं तो हमारे सामने देखिए दो तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। पहला यह कि क्या बोडो समझौता प्रश्न से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आएगा कि बोडो समझौता क्या था या वहां क्या चल रहा था, इसके तहत कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर दूसरा यह होता है कि क्या इसको आधार बना करके पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवाद की स्थिति है उस पर प्रश्न आएगा। पिछले कुछ सालों से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने जो अपने प्रश्न पूछने के तरीके में जो बदलाव किया है वह कुछ इसी तरह का है कि वह एक घटना को देखता है। अच्छा, यह घटना घटी, यानी कि बोडो समझौता हुआ, यह एक घटना हुई और इस घटना का संबंध असम से है और असम के एक जनजाति समूह से है, ठीक है। तो इसके बाद सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि जो प्रश्न पूछने का जो फैलाव है उसे थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं, और इसे जो असम की जो समस्या थी या कह लीजिए असम में जो अब तक उग्रवाद की समस्या थी, तो हो सकता है कि इसे पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या से जोड़ दिया जाए। तो ये मेरा अपना असेसमेंट है कि असम में जो अभी समझौता हुआ है उसके बारे में तो आपको जानना ही है, थोड़ी सी बातें आपको जाननी ही चाहिए, जिनकी चर्चा मैंने आज अभी थोड़ी सी की है, और आपको ध्यान होगा कि इसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी विस्तार से कल की थी। ये आपका एक परिचयात्मक सूचना आपके लिए हो गई, इतनी जानकारी आपको है। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आप जनरल स्टडीज के मेंस के सिलेबस में जाइए थर्ड पेपर में, तो उसमें बकायदे नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मतलब आप कह लीजिए कि औसतन 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस थोड़ा सा है लेकिन प्रश्न आपको 3 मिल जाते हैं, 20 में 3 बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के जब आप विस्तृत दायरे को देखते हैं तो फिर जो प्रश्न बनता है वह बनता है पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, यानी कि इसी बहाने आपको पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की क्या स्थिति है इसके ऊपर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, उत्तर पूर्व भारत भी कहा जाता है और पूर्वोत्तर भारत भी कहा जाता है, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, जो भी आप कह लें। तो जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें एज ए होल, अलग अलग राज्यों के बारे में नहीं, उसकी पूरी जो समस्या है जहां उग्रवादी गतिविधियां, पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियां जारी हैं, होती रहती हैं, उसके कारण क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग लगभग अगर हम उत्तर पूर्व भारत के सभी उग्रवादी संगठनों की संख्या करें तो लगभग लगभग 200 के आसपास है। छोटा सा देखिए एरिया है, लेकिन वहां 200 उग्रवादी संगठन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसमें मणिपुर में तो सबसे ज्यादा है, लगभग 45 से 50 उग्रवादी संगठन सिर्फ मणिपुर में। तो ऐसा क्यों है? तो इसके तहत हम कुछ बातें यहां आइए जान लेते हैं। कि पहला तो है कि इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति अलग है, यहां तक कि हमारी जो नृजातीय पहचान भी है, वंशज जिसको आप कहते हैं, वो भी अलग है। हम आर्यन समूह के नहीं हैं, हम दूसरे समूह को बिलोंग करते हैं, हमारी धार्मिक जो विश्वास है वो यहां से मेल नहीं खाती, हमारी भाषा बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हम बिल्कुल अलग समूह को बिलोंग करते हैं, तो हम भारत को स्वीकार नहीं करते। कुछ संगठन हैं जो ऐसा कहते हैं, सभी नहीं कहते, कुछ संगठन ऐसा कहते हैं। हाँ, जो संगठन भारत के साथ रहना पसंद करते हैं वो फिर अपने स्वायत्तता की मांग करते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, हमारी भाषा बनी रहे, हमारे जो लैंड है वो उसे उस पर कोई कब्जा बाहर का व्यक्ति आकर के न कर ले, तो उसके लिए वो डिमांड करते हैं और उसके लिए हमारे संविधान में बकायदे प्रोविजन्स हैं, उसकी कल हम लोगों ने चर्चा की थी। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां की बकायदे आपको बांग्लादेश मिलेगा, नेपाल मिलेगा, वहां आपको भूटान मिलेगा, वहां आपको फिर म्यांमार मिलेगा, और इसमें खासकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, इनसे बहुत अधिक घुसपैठ होती है, बहुत अधिक घुसपैठ होती है। स्पेशली इसमें मैं आपके ध्यान में म्यांमार को लाना चाहूंगा, क्योंकि म्यांमार जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद से सबसे ज्यादा संबंधित है। म्यांमार एक तो यह है कि लगभग 1650 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सोचिए, हमारे म्यांमार से मिलती है, और दूसरी बात कि चार राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, एक तो 1650 किलोमीटर कम लंबी नहीं है, और दूसरा चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जाकर के आप नक्शे पर देखिए, और एक और चीज जिसको कह लीजिए करेला और नीम चढ़ा, कि ये जो हमारी सीमा है उस सीमा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र कठिन पहाड़ी वाला है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत कठिन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, वहां बहुत घने जंगल हैं, और दोनों ओर जो है फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उग्रवादी हैं उनको रहने के लिए, भाग कर छिपने के लिए बड़े आराम से जगह मिल जाती है, वहीं उनकी वहाँ दोनों क्षेत्र की तरफ आदिवासी समूह भी रहते हैं, जनजाति समूह रहते हैं, तो वहां से प्रशिक्षण के लिए युवा मिल जाते हैं, वहां वो कैंप लगा लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि इन उग्रवादियों के लिए बहुत ही आदर्श केंद्र स्थल का काम करती है, और इसके कारण जो हमारे पूर्वोत्तर भारत की जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलता है। थाईलैंड वगैरह से हथियार खरीद करके म्यांमार होते हुए इन उग्रवादियों तक पहुंचा दिए जाते हैं, और इसीलिए भारत सरकार के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे इन पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया जाए। एक बात और है कि यहां देखिए जनजाति समूह है, जनजाति समूह एक तरह से कह लीजिए कबीलाई पद्धति में अब तक रहे हैं, तो जो कबीलाई पद्धति होती है उसमें जो विभिन्न जाति समूह हैं उनमें भी आपस में संघर्ष होते रहते हैं, तो वहां ऐसा नहीं है कि जो उग्रवादी गुट है ये केवल सरकार के खिलाफ ही संघर्ष कर रहे हैं, आपस में भी ये उलझते रहते हैं, आपस में भी इनके झगड़े होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, इसके कारण भी जो उग्रवादी गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, समय की सीमा को देखते हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते थे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को लेकर के, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि इस टॉपिक पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और इसमें एक बहुत अच्छी क्लिपिंग है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का, जो जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को अब जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, उससे बाहर आ जाना चाहिए, उससे भारत को कैसे फायदा होगा। तो बिल्कुल उन्होंने एक नए अंदाज में अपनी बात कही है। इसको केंद्र में रख करके आप सभी इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आपको लगे उन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आता हूँ ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं: अंकित राज मुंबई से, सर्वजीत शर्मा वाराणसी से, हेमंत चौहान, सगुना श्रीमाली अहमदाबाद से, सीमा सिंह, तुलसी कुमारी, संदीप चौहान, मनीष पटेल, समीक्षा सोनी, अंजलि मौर्य, तशावांग चुके, प्रेमपाल दिल्ली से और मोहम्मद आसिफ इकबाल नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।